హరి కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతం ప్రథమ స్కంద అధ్యాయ 16 శ్లోక సంఖ్య 9. ఇస్ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన మే ప్రవేశ్ కర్నే సే పహలే గురు ఆర్ గౌరంగ సే కృపా కి యాచనా కర్తే హువే మంగళ ఆచరణ కరేంగే తాకి హమ్ జో అధ్యయన కర్ రహే హై ఉస్కా పూరా పూరా లాభ ప్రాప్త హో సకే జో కి హై కృష్ణ ప్రేమ్ కి ప్రాప్తి. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నందగోప కుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః. నమః పంకజనాభాయ నమః పంకజమాలినీ నమః పంకజనేత్రాయ నమస్తే పంకజాంగ్రయే. కృష్ణ త్వదీయ పద పంకజ పంజరాంతం అధ్యైవమే విశతో మానసరాజహంస ప్రాణప్రయాణ సమయే కఫవాత పిత్తయే కంఠావరోధన విదో స్మరణం కుతస్త ఆరాధ్యో భగవాన్ ్రజేషతనాయ తత్థామ వృందావనం రమ్యాకాశిదుపాసనా వ్రజవదు వర్కేనయా కల్పితా. శ్రీమద్భాగవతే ప్రమాణమమాలం ప్రేమ పుమర్థో మహా శ్రీచైతన్య మహాప్రభు మతమిదం తత్రాద్రహో పరారివిందే నపదారివిందం ముఖారివిందే వినివేశయంతం వటస్య పత్రస్య పుటే శయానం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి. శ్రీకృష్ణ గోవింద హరే మురారీ హే నాథ నారాయణ వాసుదేవ జిహవే పిబస్వ మృతుమేతదేవ గోవింద దామో ధరమాధవేతి. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయ ముదీరయే. నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతీయుత్తమ శ్లోకే భక్తిర భవతి నైష్టికి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధార శ్రీవాసది గౌర భక్తవింద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. గ్రంథ శ్రీమద్భాగవత మహాపురాణ కి జై హో. ప్రథమ స్కంద అధ్యాయ 16, జిస్కా శీర్షక్ హై పరీక్షిత్ నే కలియుగ కా సత్కార్ కిస్ తరహ కియా. శ్లోక సంఖ్య 9. ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और अत्यंत ही सुंदर प्रैक्टिकल लाइफ जो आज हम मनुष्य जीवन में बिता रहे हैं उसके विषय में सूत गोस्वामी बता रहे हैं, बहुत ही सुंदर है. कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए. मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंदायुषश्च वै निद्रया ह्रियते नत्तम् దివాచ వ్యర్థకర్మభీ. మందస్య మంద ప్రజ్ఞస్య వయో మందాయుషశ్చ వై నిద్రయా హ్రియతే నత్తం దివాచ వ్యర్థకర్మభీ. మందస్య మంద ప్రజ్ఞస్య వయో మందాయుషశ్చ వై నిద్రయా ప్రియతే నత్తం దివాచ వ్యర్థకర్మభీ. శబ్దార్థ మందస్య అర్థాత్ ఆలసీ, మంద యని అల్ప, ప్రజ్ఞస్య యని బుద్ధి కా, వయో అర్థాత్ ఆయు, మంద మతలబ్ లఘు, ఆయుష్య అర్థాత్ ఆయు కా, చ తథా వయ యని ఠీక్. నిద్రయా ప్రియతే నక్తం, నిద్రయా మతలబ్ సోనే మే, ప్రియతే మతలబ్ బీచ్ జాతీ హై, నక్తం యని రాత్రి, దేవాచ ఔర్ జో దిన్ హై వో వ్యర్థ కర్మ భీ, వ్యర్థ కే బేకార్ కార్యో మే. అనువాద్ అల్ప బుద్ధి తథా కమ్ ఆయు వాలే ఆలసీ మనుష్య రాత్ కో సోకర్ తథా దిన్ కో వ్యర్థ కే కార్యో మే బితా దేతే హై. శ్రీ ప్రభుపాద జీ బహుత్ హీ సుందర రీతి సే సమ్జాయెంగే తాత్పర్య శ్రీల ప్రభుపాద ద్వారా. శ్రీల ప్రభుపాద జీ కీ జై హో. శ్రీల ప్రభుపాద జీ కేతే అల్పజ్ఞ లోగ్ మనుష్య జీవన్ కే వాస్తవిక మహత్వ కో నహీ జాంతే. మానవ రూప ప్రకృతి కా విశిష్ట ఉపహార హై జిసే వహ జీవ పర్ కష్టోం కే కఠోర్ నియమో కో లాగూ కర్కే ప్రదాన్ కర్తీ హై. यह जीवन के सर्वोच्च वरदान को प्राप्त करने अर्थात बारंबार जन्म तथा मृत्यु के बंधन से निकलने के लिए अच्छा अवसर होता है. बुद्धिमान लोग बंधन से निकलने के लिए कठिन प्रयत्न द्वारा इस महत्वपूर्ण उपहार की रक्षा करते हैं, लेकिन अल्पज्ञ लोग आलसी होते हैं और इस उपहार स्वरूप मानव शरीर को बहुबंधन से मोक्ष पाने के लिए प्रयोग करने में असमर्थ रहते हैं. वे तो तथाकथित आर्थिक विकास में अधिक रुचि दिखाते हैं और क्षणिक शरीर के इंद्रिय भोग हेतु ही जीवन भर कठिन श्रम करते रहते हैं. प्रकृति ने इंद्रिय भोग की अनुमति तो पशुओं को भी दे रखी है और इस तरह मनुष्य भी अपने पूर्व जन्म या इस जन्म के अनुसार कुछ न कुछ इंद्रिय भोग तो कर ही सकता है, लेकिन मनुष्य को इतना अवश्य समझना चाहिए कि इस मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य इंद्रिय भोग नहीं है. यहाँ कहा गया है कि दिन में मनुष्य व्यर्थ की ही कार्य करता रहता है, क्योंकि एकमात्र लक्ष्य इंद्रिय भोग रहता है. हम विशेष करके बड़े बड़े शहरों तथा
औद्योगिक नगरों में देख सकते हैं कि किस तरह से मनुष्य व्यर्थ के कार्यों में लगा रहता है। मानवीय शक्ति से तरह तरह की वस्तुएं निर्मित की जाती हैं, किंतु वे सब इंद्रिय भोग के लिए ही होती हैं, भवबंधन से छूटने के लिए नहीं होती। और दिन भर कठिन श्रम करने के बाद थका हारा मनुष्य या तो सोता है या रात में संभोग करता है। अल्पज्ञों के लिए भौतिकतावादी सभ्य जीवन का यही कार्यक्रम है। अतएव यहाँ पर उन्हें आलसी, अभागा तथा अल्प आयु कहा गया है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालम् पङ्गुं लङ्घयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जिसमें सूत गोस्वामी कहते हैं मंदस्य। मंदस्य मतलब आलसी है। वो कार्य अभी इस भौतिक जगत में हम देखते, पहले भी बताया गया 1.1.3 में, प्रायण अल्प आयुष्य सभ्य कलावस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य ह्युपद्रता। कि एक तो पहले से उसकी आयु कम है, ऊपर से मंद है, आलसी है। आलसी जैसे यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि बड़े बड़े शहरों में आलसी नहीं है लोग, लेकिन कार्य करते हैं। और वो कैसे कर रहे हैं? केवल भौतिक शरीर को आनंद प्रदान करने के लिए, केवल इंद्रिय भोग करने के लिए। तो उसको शास्त्र मंद और मंद प्रज्ञ कहता है। मंद प्रज्ञ मतलब अपनी बुद्धि से वो वास्तविक कार्य जिसके लिए यह मनुष्य जीवन मिला है वो ना करके वो कार्य करता है जो कि जानवर भी कर सकते हैं। वास्तव में भक्तों, ये मनुष्य जीवन इसलिए नहीं मिला है कि हम केवल पशुओं की तरह भोग भोगे। भोग भोगने के लिए तो 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में सारी जो जितनी भी योनियां हैं उसमें आहार, निद्रा, वायु, मैथुन, ये सब चलता रहता है। और अगर हम मनुष्य जीवन को प्राप्त करके भी केवल अपने इस कीमती समय को केवल इंद्रिय भोग के लिए यूज कर रहे हैं तो उसका कितना दुरुपयोग किया जा रहा है। ये मनुष्य जीवन वास्तव में बहुत ही, जैसे श्री प्रभुपाद जी ने कहा, ये प्रकृति का एक उपहार है। और उपहार हमें क्यों मिला है? हम सब मनुष्य है ना, हमको ये मनुष्य जीवन मिला है तो क्यों मिला है? तो यहाँ जी श्री प्रभुपाद जी उत्तर दे रहे हैं, जीव पर कष्टों के कठोर नियमों को लागू करके प्रदान करती है। बहुत बहुत कठोर नियम लागू किए हैं हमने। 84 लाख योनियों में न जाने कितने दुखों को भोगा है, न जाने कितनी दफा हमको उन पशुओं की तरह कभी काटा गया, कभी मारा गया, कभी क्या किया गया, कभी पकाया गया, कभी भुना गया। कभी कभी हम भूख के मर गए और कभी हमें मार दिया गया। ना जाने कितने कठोर नियमों को क्रॉस करने के बाद प्रकृति ने हमें ये मनुष्य जीवन का उपहार दिया है। तो हमें इस मनुष्य जीवन के की पूरी पूरी कदर करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है? मंदायुष्यश्चवे, ये इसके अंदर जो है ना, आयु बहुत थोड़ी मिली है। ऐसा नहीं कि मनुष्य जीवन बहुत समय तक चलेगा, मिलता बहुत कठिनाई से है, मिलता बहुत कठोर परिश्रम के बाद है, परंतु समाप्त बहुत जल्दी हो जाता है। इसलिए हमें अपने समय को बहुत ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। समय बहुत कीमती है, बहुत मुश्किल से मिलता है, इसलिए इस समय का सदुपयोग करके भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, यह जीवन सर्वोच्च वरदान को प्राप्त करने अर्थात बारंबार जन्म मृत्यु के बंधन से निकलने के लिए अच्छा अवसर है। इस मनुष्य जीवन में ही केवल हम जन्म मृत्यु के चक्कर से बच सकते हैं। केवल इस मनुष्य जीवन में ही संभव है कि हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ये जो 10,000 साल का जो स्वर्ण युग मिला है ना हमें, ये और अभी जो हम इस युग में अवतरित हुए हैं, यानी कि इस युग में जब हमारा जन्म लिया दिया है ना भगवान ने, तो इससे बड़ी कृपा और कुछ नहीं। ये इतना सरल मार्ग दिया चैतन्य महाप्रभु ने, केवल हरिनाम जप करना है, केवल भगवान की कथाओं को श्रवण करना है, कोई कठिन तपस्या नहीं करनी, कोई कठिन योग दान यज्ञ कुछ नहीं करना, केवल भगवान की पवित्र। और ये कितना शॉर्ट टाइम है, हम सोच सकते हैं कि अभी जब हमारी मृत्यु हो जाएगी और अगर हमने इस समय में भगवत प्राप्ति को, अपने इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया, तो पुनः जब हमारा जन्म होगा तो इस मनुष्य जन्म में यदि हमने भगवान को प्राप्त नहीं किया और ये जन्म ऐसे ही समाप्त हो गया और बगैर भगवान को प्राप्त किए यदि हमारी मृत्यु हो गई, तो दोबारा से जब हमारा जन्म होगा तो फिर ये समय नहीं रहेगा हमारे पास। ये इस तरह से हमें भक्ति इतनी सरलता से प्राप्त नहीं होगी, ना तो वृंदावन होगा, ना यमुना होगी, ना ही भगवान की ये लीलाओं की इतनी स्मृति होगी, ना ही यह महामंत्र होगा। ये महामंत्र बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है, और इस समय हमारा सबसे मेन कर्तव्य ये है कि ये न केन प्रकारे उस महामंत्र की डोर को कस के पकड़े, ताकि हम अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करें। परंतु आज का मनुष्य अपने इस कीमती समय को इम्पोर्टेंस नहीं देता, केवल टाइम पास करता रहता है। किसी से भी पूछें आप क्या कर रहे हो, बोला टीवी देखकर टाइम पास कर रहा हूँ, कोई मोबाइल पर गेम खेलकर टाइम पास करता है। काल प्रतिक्षण हमारे इस समय को काट रहा है, ये समय एक बार चला जाएगा फिर कभी वापस नहीं आएगा। ये मूर्ख मनुष्य जिसको यहाँ पर मंदस्य मंद प्रज्ञस्य कहा गया, वो ये नहीं जानता कि किस प्रकार से मेरा समय मुझे पास कर रहा है। वास्तव में भक्तों हम टाइम पास नहीं कर रहे, टाइम हमें पास कर रहा है। आज देखिए हमारे बीच में जो जवान है वो कल बच्चे थे, तो फिर उनको टाइम ने पास कर दिया, अब वो मर जाएंगे ना, तभी जाके वो बच्चे बन सकते हैं। हो सकता है कि वो किसी कुत्ते के बच्चे बने, लेकिन मनुष्य के बच्चे अब वो पता नहीं कभी उनको बनने का अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो बूढ़े हो गए हैं वो चाहे कुछ भी कर लें अपनी जवानी को वापस नहीं ला सकते। पश्यन अपि न पश्यति, वो देख रहे हैं कि समय जो है वो धीरे धीरे करके हमारी हाथ से निकला जा रहा है, लेकिन वो उस समय का सदुपयोग नहीं करते। चाणक्य पंडित कहते हैं, आयुष्य क्षण एको भी, जो इस आयु का एक क्षण है ना, वो भी न लभ्ये स्वर्ण कोटि भी। अगर एक क्षण भी आपको चाहिए होगा ना, तो करोड़ों करोड़ों सोने की मोहरें दे देंगे ना, लेकिन फिर भी एक क्षण भी हमें प्राप्त नहीं होगा। हमारे पास यदि कोई वास्तविक कीमती कोई चीज है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव अगर हमारे पास कुछ है, तो वो समय है। हमें समय का महत्व जानना चाहिए, काल बहुत महत्वपूर्ण है। जिसने समय की महिमा को समझ लिया वो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करेगा। परंतु हम इस सुंदर समय को भौतिक कार्यों में ही समाप्त कर देते हैं। भगवान के द्वारा इस सुंदर समय को जो हमें दिया है, केवल भौतिक भोग, खाना पीना कमाना, केवल इसी में लगा देते हैं। भागवतम में समय के इस अपव्यय को चूहे की तरह बताया गया है। आपने देखा है चूहे को कभी गौर से, वो कभी चलता नहीं है, सदैव दौड़ता रहता है। उसको इतना स्ट्रगल करना होता है, इतना कार्य होता है उसको, कि सदैव दौड़ता रहता है। आज का मनुष्य भी चूहे की तरह दौड़ता रहता है। ये करना है वो करना है, और इस तरह करते 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 क्या होता है, चूहा जो है वो अपने लिए बहुत सारे घर बनाता है, बहुत सारे बिल बनाता है, और उस बिल के अंदर रहता है, और वो सोचता है यहाँ से एक बिल का दरवाजा बनाऊंगा, यहाँ से एक दरवाजा बनाऊंगा, यहाँ से एक दरवाजा बनाऊंगा, और जानता है कि उस खेत में कहीं सर्प भी रहते हैं, और सर्प का क्या काम है कि वो कभी भी अपने लिए बिल नहीं बनाते। वो क्या करते हैं, जो चूहे का बिल होता है ना उसी के अंदर रहते हैं। तो चूहा क्या करता है, अपने लिए बिल बनाता है और एक तरफ से निकलता है, सर्प बाहर ऐसे बन ऐसे फुंकार लगा कर प्राण उठा कर बैठा होता है और जैसे ही चूहा बाहर आता है उसको गप करके खा जाता है और उसके घर में कब्जा कर लेता है। उसी तरह भक्तों, यहाँ पर कहा गया मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंदायुष्यवे, हम भी इस छोटी सी आयु में केवल यही करते हैं, ये घर बनाना, यहाँ घर लेना है, वहाँ घर लेना है, और घर के अंदर भी बेडरूम बनाना है, ड्राइंग रूम बनाना है, गेस्ट रूम बनाना है, किचन बनाना है, ये करना है, गाड़ियाँ लेनी है, वो लेना, भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करते 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 अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि हमारा ये जो कीमती समय है वो केवल भौतिक वस्तुओं को अर्जित करते करते समाप्त हो जाता है और काल रूपी सर्प आके हमें गप करके खा जाता है। जिस प्रकार चूहा सर्प चूहे को खा लेता है और उसके सारे घर पे कब्जा कर लेता है, उसी प्रकार ये काल रूपी सर्प हमें निगल जाता है। सब धन दौलत जो भी हमने कमाया, हम लोग गधे और बैल की तरह मेहनत करते 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 जो अपनी पूरी आयु को समाप्त किया, सब कुछ यहीं रह जाता है। जिनके लिए कमाया, जिनके साथ आनंद उठाने का सोच कर कमाया, वो सब भी हमें इतना ही कहते हैं कि अब ये सब तुम्हारे काम नहीं आएगा, राम नाम संग है। तो मानो उस समय वो जीव आत्मा बोले कि ये कमाते वक्त वो तो मैंने लिया ही नहीं, अब नाम जब मैंने जप किया नहीं, राम का नाम लिया नहीं, तो मेरे संग कैसे जाएगा। लेकिन वो उस समय सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि तब तो समय हाथ से निकल गया, फिर पछतावित क्या होते जब चिड़िया चिक गई खेत, अब पछताने से क्या फायदा। इसलिए अभी प्रेजेंट समय में हमें देखना है कि अपने समय को कैसे व्यतीत करना है, कैसे अपने समय का सदुपयोग करना है, क्योंकि शास्त्र कहता है काल चक्रम स्वयं भ्रमित, ये जो काल का चक्र है ना वो किसी के लिए रुकता नहीं है, वो सदैव चलता रहता है, कंटिन्यूस चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। पूरी दुनिया भी यदि चाहे तो उसको रोक नहीं सकती, आज तक किसी ने भी समय को नहीं रोक सका। तो वास्तव में हमें समय के महत्व को जानना चाहिए कि हमें किस तरह से समय का सदुपयोग करना चाहिए। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं बुद्धिमान वही है जो बंधन से निकलने के लिए कठिन प्रयत्न द्वारा इस महत्वपूर्ण उपहार की रक्षा करते हैं। ये मनुष्य जन्म ये महत्वपूर्ण उपहार है और बुद्धिमान यही है जो कठिन प्रयत्न द्वारा इस उपहार की रक्षा करे। और वो क्या कठिन प्रयत्न है तो शास्त्र बताता है, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी जीवन शव समान सो प्राण। वो भले ही अपने आप को मनुष्य कहता है परंतु वो वास्तव में चलती फिरती लाश है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है। तो मानो वो लाश हमें कहे कि मैं शव कैसे हो सकती हूँ, भले ही भगवान की भक्ति नहीं करती मगर शव तो कभी सांस नहीं लेता, मैं तो सांस लेती हूँ, तो हम उसे कहेंगे। तो शास्त्र कहता है कि श्वास तो जो कुम्हार की चिमनी होती है ना वो भी लेती है, तो क्या वो मनुष्य है। तो मानो वो कहे मैं तो भोजन खाती हूँ, वो भोजन तो नहीं खाती, तो उसका उत्तर देता है शास्त्र कि भोजन तो कुत्ता भी खाता है, तो फिर कौन सा बड़ा कार्य कर दिया तुमने भोजन का के। तो बोलो कि हमारी संतान उत्पन्न होती है, हम उनकी सुरक्षा करने के लिए ये सब भौतिक कार्य कर रहे हैं। तो वो कहता है शास्त्र कि बच्चे तो सुअर को भी होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आहार निद्रा भाई मैथुन ये सारे कार्य पशुओं को भी सुलभ हैं, क्या ये महत्वपूर्ण मनुष्य जीवन केवल इसी कार्य के लिए मिला है। नहीं भक्तों, यहाँ पर कहा गया मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंदायुष्यवे, ये जो मनुष्य जीवन है वो बहुत ज्यादा कीमती है, वो इन कार्यों के लिए नहीं मिला है, परंतु जो अल्प बुद्धि है तथा कम आयु वाले आलसी मनुष्य हैं, वो इसी तरह से अपने जीवन को समाप्त करते क्या करते हैं, निद्रया ह्रियते नक्तम देवाच व्यर्थ कर्म भी। पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक व्यर्थ कर्म भी। व्यर्थ मतलब फिजूल के बेकार कार्य। भले आज का मनुष्य सोचे कि मैं अपने पूरे दिन में बहुत ज्यादा बिजी हूँ, किसी से पूछो, किसी को कहो कि आज भागवत कथा है, आप आओगे? बोला मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। और वो सारे कार्य जिनमें वो बिजी रहता है, यहाँ भागवत इस बात का प्रमाण देता है कि वो सारे कार्य यदि कृष्ण कथा से संबंधित नहीं है, यदि भगवत भक्ति से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर साफ शब्दों में व्यर्थ कर्म भी। भले ही भौतिक दृष्टि से ऐसा लगे कि वो कितना ज्यादा आर्थिक विकास कर रहा है, कितने ज्यादा उसने धन अर्जित किया है, कितना अपनी लाइफ को सुविधाएं प्रदान की हैं, परंतु वो सारे व्यर्थ कर्म भी। एक समय ऐसा आएगा, भगवान कहते हैं मृत्यु सर्व हरस्याह, मैं मृत्यु बनकर आऊंगा और तुम्हारा सब कुछ जो तुमने बहुत ही मेहनत से कमाया है वो सब हरण कर लूंगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा और हम इस सब कुछ को छोड़कर चले जाएंगे, फिर उसके लिए इतनी ज्यादा स्ट्रगल करने की क्या आवश्यकता है। श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत सुंदर बताया है कि ये अल्पज्ञ लोग हैं, इतने आलसी हैं और इस उपहार स्वरूप मानव शरीर को भवबंधन से मोक्ष पाने के प्रयोग करने में असमर्थ रहते हैं। वे तो तथाकथित आर्थिक विकास में ही अधिक रुचि दिखाते हैं और क्षणिक शरीर के इंद्रिय भोग हेतु ही जीवन भर कठिन श्रम करते रहते हैं। आज के धनी व्यक्तियों को भी यदि देखें तो उनके पास समय ही नहीं होता है, कठिन श्रम, गधे और बैल की तरह सारी जिंदगी श्रम करते रहते हैं। और किसके लिए? केवल इंद्रिय भोग के लिए, इंद्रिय भोग, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। ये चाहिए, वो चाहिए, इसको प्राप्त करना है, ये बंगलो खरीदना है, वो बिल्डिंग बनानी है, ये करना है, इस तरह से अपने इस बहुमूल्य जीवन को नष्ट कर रहे होते हैं। श्री प्रभुपाद जी ने एक बहुत ही सुंदर सिद्धांत दिया कि प्रकृति ने इंद्रिय भोग की अनुमति तो पशुओं को भी दे रखी है और इस तरह मनुष्य भी अपने पूर्व जन्म या इस जन्म के अनुसार कुछ न कुछ इंद्रिय भोग तो कर ही सकता है, लेकिन मनुष्य को इतना अवश्य समझना चाहिए कि इस मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य इंद्रिय भोग नहीं है। यहाँ शास्त्र हमें ये बता रहा है कि आज का जो तथाकथित बुद्धिमान मनुष्य सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा आर्थिक विकास करके, भौतिक सुविधाएं प्राप्त करके, इंद्रिय तृप्ति करके ही मैं वास्तविक सक्सेस जीवन गुजार सकता हूँ, उसको यहाँ पर पशुओं की तरह कहा गया कि जिस प्रकार पशुओं को भी अपने कर्मों के अनुसार कोई न कोई इंद्रिय भोग प्राप्त होता है तो मनुष्यों को भी मिलता है। और मनुष्य यदि अपने इस बहुत ही कीमती मनुष्य जन्म को केवल इंद्रिय भोग में ही व्यस्त बेकार जाया कर रहा है तो फिर वो बुद्धिमानता नहीं है। यहाँ कहा गया है कि निद्रया ह्रियते नक्तिम दिवाच व्यर्थ कर्म भी, कि दिन में मनुष्य व्यर्थ ही कार्य करता है क्योंकि एकमात्र लक्ष्य इंद्रिय भोग ही रहता है। हम विशेष करके यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो दिन में बहुत ज्यादा बिजी दिख रहे हैं ना आपको, वो सारे के सारे व्यर्थ ही कार्य कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि देवाच व्यर्थ कर्म भी, वो कार्य जो आपको कृष्ण से दूर कर रहे हैं, वो कार्य जिनकी वजह से आप इतने बिजी हो गए हो कि भक्ति के लिए समय नहीं निकलता, भागवत श्रवण करने के लिए समय नहीं निकलता, भगवान का नाम स्मरण करने के लिए समय नहीं निकलता, वो कार्य तो बेकार ही है, उससे तो और भी आपकी आयु का नाश हो रहा है। इसी का दिवाच व्यर्थ कर्म भी, पूरा का पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक जीव व्यर्थ इंद्रिय विषय के लिए ही सोचता रहता है और जब थक हार के रात को घर आता है तो निद्रया ह्रियते नक्तिम, रात को केवल निद्रा की गोद में सो जाता है। और सो जाए तो भी चलो ठीक है, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं थकारा मनुष्य या तो सोता है या रात पर संभोग करता है। अल्पज्ञों के लिए भौतिकवादी सभ्य जीवन का यही कार्यक्रम है, बस यही एडवांसमेंट है। کہ زیادہ سے زیادہ کماؤ اور آ کے گھر میں کتوں کی طرح سو جاؤ. یہ جیون نہیں ہے. واستو میں اس لیے ہمیں یہ منشیہ جیون نہیں ملا ہے. اس لیے شری پروپاد جی کہتے ہیں یہاں پر انہیں آلسی، ابھاگا اور الپ آیو والا کہا گیا ہے. مندسیہ مند پرجس ویو مندایو ششچ یوے، کہ وہ آلسی ہے، ابھاگا ہے اور آیو اس کی کم ہے، اور اس کو اتنا مہتوپورن جیون کو کیول اندری بھوگ کے لیے ہی سماپت کرتا ہے. پریشت مہاراج سکھدیو گوسوامی سے پرشن کرتے ہیں کہ ہے سکھدیو گوسوامی، میرے پاس آیو بہت کم رہ گئی ہے، کیول 7 دن کا سمے ہے، اب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ میں ایسا کیا کروں جو میرا کلیان ہو. میں جو ویکتی مرنے والا ہے، مرنشیل ویکتی کو کیا کرنا چاہیے جس سے اس کا جیون کلیان مئی ہو. تب پتا شکتے کو سوامی نے کہا کہ میں آپ کی اس پرشن سے بہت پرسن ہوں، مجھے بہت پرسنتا ہو رہی ہے کیونکہ آپ نے جو پرشن کیا ہے وہ سبھی جیووں کے کلیان کے لیے، کیونکہ کیول آپ کے پاس کم سمے نہیں ہے. واستو میں پرائن الپ آیو، ہر کوئی اس کلیوگ میں الپ آیو ہے. تو میں آپ کو بتاؤں وہ کاریہ جس سے آپ کا کلیان ہوگا وہ ہے شون. تو پریشت مہاراج نے کہا شون کس کے وشے میں؟ تب سکھدیو گوسوامی کہتے ہیں ویسے تو اس سنسار میں سننے اور سنانے کے لیے کروڑوں ٹاپکس ہیں، ہر کوئی کچھ نہ کچھ بات سن رہا ہے اور سنا رہا ہے، پرنتو کرشن کتھا کو چھوڑ کر انی ساری باتیں ماتر ہماری جیون کی آیو کو کاٹنے والی ہیں، موت کو نمنترن دینے والی ہیں. آج کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آج ہم سب کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ سنتے رہتے ہیں. دو متر آپس میں بیٹھتے ہیں تو ایسی بات، وہ اچھا آدمی ہے، وہ اچھا آدمی نہیں ہے، اس کا سوبھاؤ اچھا نہیں ہے، وہ اس طرح سے بولتا ہے، ہم وہاں پر گئے تھے تو اس نے ایسے بولا. دو لڑکیاں آپس میں بات کریں گی تو کیا کریں گی؟ اس کی لپسٹک کا شیڈ کتنا اچھا ہے، وہ ڈریسنگ کتنی اچھی کرتی ہے، اس کے یہ جو جویلری پہنتی ہے یا جو میک اپ کرتی ہے وہ کتنا سندر کرتی ہے. کیا یہی بات ہے، یہی ٹاپکس بات کرنے کے لیے؟ شری پروپاد جی ہمیں شاستر کے انوسار بتاتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کی انیا باتیں ہیں وہ ساری باتیں مینڈک کی طرح ٹڑ ٹڑ کرنے کی سمان ہے. جیسے مینڈک جو ہے وہ جیل میں ہوتا ہے اور سانپ جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتا مینڈک کو، راتری میں سانپ کو دکھ رہا نہیں ہوتا ہے مینڈک، لیکن مینڈک اپنے ڈرانے کی وجہ سے، کیونکہ وہ سانپ جو ہے وہ ادھر ہی ہوتا ہے اور جیسے مینڈک ٹر 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 کرتا رہتا ہے تو پھر سانپ آ کے اس کو کھا جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتا چل جاتا ہے مینڈک وہاں ہے. اسی پرکار ویسے تو ہمارے جیون کی اودھی 100 سال کی ہے، کلیوگ میں پرانی کی اودھی ہے 100 سال، اسے ملنا چاہیے یا اتنے ورش جینے کے لیے، پرنتو یہ جیو یوں ہی مینڈک کی طرح ٹر 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 کر کے اپنی آیو کو نشٹ کرتے رہتا ہے. اسی لیے ہمیں اس جیون کی قیمتی سمے کو فضول کے ویرتھ کی باتوں میں نہیں گنوانا چاہیے. اور ایک بہت ہی مہتوپورن بات میں آپ کو بتاؤں کہ یدی کوئی ویرتھ باتوں کے بجائے بھاگوت کتھا کرتا ہے یا شرون کرتا ہے تو جتنے سمے تک کوئی ویکتی بھاگوت بولتا ہے یا سنتا ہے تو اتنی آیو ان کی جیون میں گنتی نہیں ہوتی، مطلب وہ آیو جو ہے وہ نشٹ نہیں ہوتی ہے کال کی کاؤنٹنگ میں، وہ کم نہیں ہوتی ہے. اتنی آیو جو ہے وہ آپ کے جیون میں بڑھتی ہے. مانو یدی کسی کی جیون اودھی 60 سال ہے اور وہ اس 60 سال کی آیو میں पांच साल यदि श्रीमद् भागवतम को श्रवण करता है अथवा पठन करता है तो वो 65 साल जिएगा, 65 ईयर्स तक, क्योंकि वो आयु आपके जीवन में इंक्रीज हो रही होती है। और बाकी जो भौतिक टॉपिक्स हैं उन वो जब हम उसका उसके विषय में डिस्कस करते हैं तो वो आयु हमारी नष्ट हो रही होती है। इसलिए शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं, महाराज केवल भागवत कथा ही श्रवण करना वह कार्य है जिससे हर उस व्यक्ति का कल्याण होगा जो मरणशील है, जिसकी आयु समाप्त होने वाली है। तो हम सबको श्रीमद् भागवत और महापुराण को श्रवण करने के नित्यम भागवत, तो यहाँ तक कहता है कंटिन्यूस भागवत श्रवण करना चाहिए, कोई समय ऐसा ना हो कि हम भागवत श्रवण ना करें। लेकिन यदि ऐसा संभव नहीं है तो दिन में एक बार कोई समय निकालना चाहिए जिसमें हमें भागवतम को श्रवण करना चाहिए और भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। उसी से हम अपने इस मनुष्य जीवन को सफल कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा ताकि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। श्री कृष्ण।